बिफोर आई बिगिन दिस पॉडकास्ट आई वॉन्ट टू ले द पिक्चर आउट अ लिटिल बिट, ठीक है? और मैं आपकी तारीफ करूंगा, शर्माना मत. आई थिंक यू आर प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक ओपिनियन राइटर्स, या मैं क्या बोलूँ, टेक टेकर्स, टेक कॉमेंटेटर्स इन द इंडियन सीन. एंड यू नो योर existence on Twitter has largely been anonymous, and probably that has helped or not helped get the message across as much as it could have. The other interesting reason is because there is a central idea that I've come to understand from you about the tech scene, which I think if people understood more, if they realized it better, shayad India ke tech scene mein 2-4-5-8% hum growth sirf us cultural impact ki wajah se dal payenge. To aaj main chahta hu ki ek hum cover kar paye ki why are you this interesting in whatever way that you might be interesting. I'm no judge of whether you're right or wrong. And two, I want to understand exactly what, according to you, does India need to take its tech future forward. Does that make sense? Have I done a good job?
Yes.
Like, how do you diagnose the current scene of tech in India?
Sabse important cheez production hota hai, building hota hai, material building होता है, मतलब जो real manufacturing होती है ना, तब से important वो चीज़ होती है. Software should be used for that first, and then software should be used for its own purposes like services and other things. तो सबसे important चीज़ एक economy के लिए manufacturing होती है. ये चीज़ तो agree कर रहे हो,
right?
अब ये पूछो कि यार ऐसा क्या है कि हम इंडिया में manufacturing नहीं करते हैं और बाहर manufacturing होती है, इसका क्या reason है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है अपने आप में, इसकी सोसाइटल क्या चैलेंज है, और उसका आंसर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ. एक कल्चरल इशू है. कल्चरल इशू ये है कि इंडिया में जब भी कोई काम हाथ से होता है उसको थोड़ा हम लोग कम वैल्यूबल मानते हैं, हाँ कि ना?
हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. मतलब हाँ, जैसे मैन्युफैक्चरर्स की इतनी औकात नहीं होती.
अरे छोड़ो मैन्युफैक्चर की यार, अगर एक आदमी हाथ से काम कर रहा है, कोई भी आदमी हाथ से काम कर रहा है, एक कारीगर का वर्ड सुना है ना, कारीगर है ना, जब भी आता है वो मिस्त्री कारीगर,
राइट?
उसकी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी इज्जत नहीं है,
बिल्कुल.
पर वो काम बहुत अच्छा करता है, कारपेंटर काम बहुत अच्छा करता है. मैंने पोस्ट भी किया था प्रेम कारपेंटर के बारे में, इसमें अगर टाइम मिले तो डालना उस पोस्ट को, कि एक कारपेंटर है जो पुणे में है, जो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, शायद पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जितना अच्छा काम करता है हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं. पैसा बनाता है बट हम उस काम की वैल्यू नहीं करते हैं. ये सच्चाई है कि नहीं, हमको ये बताओ.
हाँ मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल है ये कि हाथ से करने वाले आदमी की इतनी,
दिमाग से काम करो और सीट पे बैठो और ऑफिस में करो, ये अपना एस्पिरेशन रहता है.
पर ये इंडिया का नहीं है, यूनिवर्सली है.
ब्लू कॉलर वेस्ट में इतना ब्लू कॉलर वर्कर की इज्जत है. मूवी वूवी देखो, द ऑफिस आई थी, ऑफिस स्पेस, जिसमें एंड में ब्लू कॉलर बन जाता है, उसे काफी एस्पिरेशन होती है. ब्लू कॉलर की इतनी, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया वहाँ पे, उसकी इतनी
थू नहीं है, मतलब उसकी फिर भी इज्जत.
हाँ मतलब बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन वर्कर तो मतलब यू नो काफी उसकी दबदबा दिखाया जाता है, काफी मूवी में करैक्टर होता है वो यार,
राइट?
इंडिया का कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो, जो मलबा धो रहा है सर पे,
हाँ.
उसकी तो बिल्कुल इज्जत नहीं होती, राइट?
नहीं.
और ये कल्चरली हमारे कल्चर में एम्बेडेड है कि काम करना हाथ से, थोड़ा सा अपने हाथ यूज कर लिए तो फिर थोड़ा बात खराब हो गई, दिमाग यूज के तो बहुत अच्छी बात हो गई,
राइट?
जिसको मैं हाई आईक्यू बोलता हूँ.
कि
अपना काम हाथ से ना करना, इसकी वैल्यू इस कल्चर में ज्यादा है. फिर दूसरी चीज आती है कि जो ईस्ट एशियन कल्चर्स हैं वो कलेक्टिव में अच्छे होते हैं, इंडिविजुअल में भले ही अच्छे हो ना हो, लेकिन कलेक्टिव अच्छा करते हैं. इंडिया वाले कलेक्टिव में कभी अच्छे नहीं होते हैं.
अच्छा,
तीन इंडियन को रख दो तो पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे.
हाँ तो ये तो अच्छा ही हुआ ना भाई कि कलेक्टिव में, लाइक कलेक्टिव ग्रुप बना दिए.
पॉलिटिकल पार्टी मतलब काम कुछ नहीं करेंगे.
I see what you mean. कि उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा.
तो चाइना इज टॉप डाउन,
राइट?
ऊपर से फरमान जाता है कि इकोनॉमी शुड डू दिस एंड दैट, एवरीबॉडी फॉलोज दिस,
राइट?
इंडिया इज बॉटम अप,
कि नीचे से अपने आप चीजें उठती हुई ऊपर पहुंचती हैं.
हर आदमी इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है कंट्री, तो हम लोग को खुद करना पड़ेगा. तो एक बॉटम अप सोसाइटी में बिलीव चाहिए, फॉलो करने की कम्युनिटी चाहिए, जो ये बात समझे कि हमें खुद ही अपने हाथ से काम करना पड़ेगा,
राइट?
तभी कंट्री आगे बढ़ेगी, वरना कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी. इसकी बात हमने भी करी थी कि अगर वॉर हो जाती है तो वॉर में प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. अब वहाँ टॉप डाउन है या बॉटम अप है, तो यहाँ खुद ही काम करना पड़ेगा अपने हाथ से।
वहां तो मतलब स्टेट मैंडेटेड वॉर का जो इक्विपमेंट है वो बनेगा, यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग जिन्होंने बनाया है जो कोऑप्ट कर सकते हैं कि भैया मेरी इस फैक्ट्री को इसमें लगा लो, वो ही रह जाएगा। ये मतलब है इस बात का?
नहीं, मतलब कहने का है कि अगर वॉर होती है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं लार्ज स्केल पे तो हम लोग वॉर को एक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर आदमी को मैन्युफैक्चरिंग में लगना पड़ेगा, और आज की डेट की मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है जो 50 साल पुरानी हो। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि सिर्फ हाथ यू नो मार के या धातु पिघला कुछ बनाना है, ड्रोन बनाना पड़ेगा। दैट इज वेयर आवर फ्यूचर इज। तो नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया के अच्छे ड्रोन स्टार्टअप्स होंगे। बात समझ रहे हो?
समझ रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट स्टार्टअप रोबोटिक्स के होंगे।
अच्छा,
नेक्स्ट स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, ना कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स होंगे, ना कि प्योर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स।
सो एक एटीट्यूडनल लेवल पे, एंड दिस इज समथिंग यू टोल्ड मी अबाउट बिफोर, आई हैव नेवर क्वाइट कंप्लीटली अंडरस्टूड, एक जो इसको कैसे बोलेंगे, लाइक देयर इज सॉर्ट ऑफ दिस फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन द गलीज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की गलियों में। मैं ट्विटर को इंटरनेट का मोहल्ला समझता हूँ, ठीक है, जहां पे सारी आंटी आके बोलती
है टीपॉट कहते हैं उसको, टीपॉट।
टीपॉट तो चलो फिर भी सबके इंडिविजुअल टीपॉट्स होते हैं ना।
करेक्ट,
मैं ट्विटर की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ट्विटर एक मोहल्ला है, जैसे इंस्टाग्राम एक फैशन शो है, अब ट्विटर एक प्रॉपर मोहल्ला है। ट्विटर पर लोग किड़किड़ किड़किड़ करते हैं, और यहीं से बॉटम अप जो हमारे देश का नेचर है, जो शायद जापान का नेचर रहा है, जो शायद जर्मनी का नेचर रहा है, एज अपोज टू रशिया एंड चाइना जिनका टॉप डाउन नेचर रहा है, ऐसे उसमें मोहल्लों से उठे हुए मूवमेंट ही दूर जाते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल आप अन्ना हजारे वाला वो देख सकते हो, जो सबसे बड़ा मूवमेंट बना हमारी मॉडर्न लाइक लास्ट 15 साल की हिस्ट्री में। एक जो चीज निकल के आ रही है वो है ये ईएक इनएक, राइट? ईएक और इनएक,
ये शायद पहली पॉडकास्ट होगी इंडिया के जो ईएक और इनएक की बात कर रही होगी।
रणवीर बात नहीं करी आपने? हंस के ऐसे मत करो, बाद में लोग गाली मेरे को देंगे भाई, लोग बोलेंगे हंसा दिया उसके नाम पे।
जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा लोग सुन चुके, नहीं वहां पर ये बात नहीं करी।
अच्छा अच्छा।
और ये हमारी ऑडियंस जो यहाँ की है, वो ट्विटर की भी ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो ये चीज़ जिस तरह से समझती है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, वो शायद उनकी ऑडियंस नहीं है। तो इस पर अगर 2 मिनट बात करें,
2 मिनट क्यों, 4 करो।
देखो ऐसा है, हाँ। सीधी सी बात है कि सारी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है आज की डेट की, वो 19वीं सदी में वियना से निकली थी।
ठीक,
अब उसका नाम लेने का फायदा नहीं है, लेकिन वो फिलॉसफीज हैं इंडस्ट्रियल एज की, जिस एज में कैपिटल और इंडस्ट्रीज अलग अलग होते थे। उस एज में टेक्नोलॉजी नाम भी कोई चीज़ ही नहीं थी, सॉफ्टवेयर नाम भी कोई चीज़ ही नहीं थी, कंप्यूटर तो ईजाद हुआ नहीं था। कंप्यूटर तो छोड़ो, एरोप्लेन भी ईजाद नहीं हुआ था, रेडियो भी ईजाद नहीं हुआ था। आज की जो एज है 21st सेंचुरी, जो कि हम लोग क्वार्टर सेंचुरी निकाल चुके हैं, को एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी की जरूरत है। ईएक वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है तुमको बताते हैं, सिंधी सी बात है, एक मेंटालिटी है। जैसे हमारी हमारे कल्चर में एक मेंटालिटी है कि भाई जो चीज़ मेरे पास आ गई है, जो चीज़ मुझे मिल गई है, वो किसी और को नहीं मिले भलाई उसको जरूरत हो। तो अगर ना मिले तो उसके 100 बहाने हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि यार देखो ट्रैफिक बहुत है, तो कार मेरे पास है लेकिन इन गरीबों के पास कार ना आए, क्योंकि अगर गरीबों के पास कार आएगी तो ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। तो ये कहना, यू नो द इफ यू से कि द पुअर शुड नॉट गेट अ कार इन इंडिया, देखा होगा तुमने आर्ग्यूमेंट यार, कि अरे कार सस्ती कर दोगे तो सबके पास आ जाएगी कार,
राइट?
ये उन्हीं के मुंह से निकलती है, इनके पास कार होती है,
राइट?
अब लेकिन जो गरीब आदमी उसे बोलो कि यार तुम्हें कार नहीं चाहिए, तो लाइक क्या बात करो सर, कार मिल जाए तो बहुत चीज़ जिंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी, गरीब के बच्चे तो सपना ही रखते हैं कार का।
बिल्कुल।
तो सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, एंड द हैव्स आर डिसाइडिंग व्हाट द हैव नॉट्स वुड हैव बेस्ड ऑन वेरियस अदर रीजंस। फॉर एग्जांपल, वन रीजन इज ट्रैफिक, द अदर रीजन इज पॉल्यूशन ऑब्वियसली, व्हिच इज वेरी वैलिड रीजन यार,
सुपर वैलिड।
The third reason in some cases is यार देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, which is very valid by the way, right? तो without disputing क्लाइमेट चेंज, without disputing pollution, how do we solve the problem of them getting access to technology consumption by using technology? कि भाई मना करने से फ़ायदा क्या है कि यार तुम लोग कार मत चलाओ, हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो पॉल्यूशन को रोके, जो क्लाइमेट चेंज रोके, हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो एक आइडिया है एक्सेलरेशन का कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करें, एक्सेलरेटिज्म, टेक्नोलॉजी यूज करें टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड सिविलाइजेशन को एक्सेलरेट करें, आगे बढ़ाएं। तो उसका पूरा पेपर लिखा है किसी ने कि टेक्नोलॉजी यूज करना इज आर रिलीजन, AI यूज करना इज अ रिलीजन, उसको रोको मत। सेल नॉन सेल मॉडल में तो फायर हो गया कि भैया किसी लोगों ने बोला कि भाई
तुम बहुत तेज आगे बढ़ रहे हो।
बताओ,
जस्ट सरप्राइजिंग,
बताओ बताओ, मतलब ये चीज बताओ कि किसी कंपनी को किसी ने आज तक बोला है कि तुम इतना तेज बढ़ रहे हो तुमको फायर कर देंगे सीईओ को, किसी ने आज तक बोला है?
व्हिच इज सो काउंटर इंट्यूटिव भाई, ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा काम करने की जूते पड़ रहे हैं।
हाँ
हाँ,
उसको फायर कर दिया रातों रात।
हाँ,
रातों रात फायर कर दिया। फ्राइडे को फायर हुआ वो बंदा, हम लोग सब बैठ गए ट्विटर पर तैनात, बंदूक बंदूक लेके उस टाइम पे। हमने कहा भाई ये साले, इसको अगर कोई कर सकता है तो फिर हमारा क्या है?
हाँ, हम
तो,
कौन है फिर,
हम कौन है?
हाँ।
और देखो सबने पूछा कि भाई उसने कुछ गलत किया है, उसने अगर पैसे चोरी किए हो या कुछ उल्टा सीधा किया हो, उसको खाले गोली हम मारेंगे। लेकिन बताओ तो नहीं, बताया नहीं किसी ने। तो हम लोग ने यार पूछा कि भैया क्या हो रहा है, तो पता चला कि इन लोगों ने फायर किया कि वो AI काफी पुश कर रहा है आगे, है ना?
राइट।
मेरा, मैंने एक ट्वीट मारी सीधी सी, मैंने एक ट्वीट मारी, मैंने कहा भाई देखो AI पुश कर रहा है तो AI अच्छी चीज है, क्योंकि वो हमारे इंडिया में आएगी तो लोगों की हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो भाई, बग्घी से कारें आई, घोड़ा से कार आई, तो लोगों को कार कन्वीनियंट यूज करके
ट्रैवल जाना, हाँ, सामान ट्रांसपोर्ट करना, रॉ मटेरियल,
हाँ, मतलब पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ी।
बिल्कुल।
तो जो गरीब आदमी था लंदन में ही था उस टाइम पे, तो वो थोड़ा अमीर हुआ, है ना? टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी बरकत आती है, AI से बरकत आएगी। आप उसको छुपा के रखोगे, गूगल यूज कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर लेगा, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे।
सही बात। तो एक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी, बिग बिजनेस खा जाएगा,
बिग बिजनेस खा जाएगा।
हाँ,
खा के ना,
हाँ,
एक खाई आ जाएगी, वो खाई और डिफरेंसेस क्रिएट करेगी
और इनइक्वालिटी क्रिएट करेगी।
$15 में वो बेच रहा है AI, बेचने तो अच्छा AI है, बेचने तो, हम लोग कंज्यूम करना तो होते कौन है वो रोकने वाले। तो एक फिलोसफी उसको कहते हैं डूमर,
डूमर।
कि यार दुनिया खत्म होने वाली है।
राइट।
डूमरिज्म इज अबाउट द आइडिया दैट सिविलाइजेशन विल एंड एंड वी शुड नॉट डू एनीथिंग एंड वी शुड जस्ट सिट एंड डाई। आई डोंट अग्री विद दैट एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज आई सी मेरे इंडियन भैया भाई लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम उनको प्रोग्रेस नहीं करवाएंगे तो उनके पास कभी वो चीज़ नहीं आएगी जो हमारे पास है। उनकी प्रोग्रेस कराना, GDP बढ़ाना, इकोनॉमी बढ़ाने से ही आएगी। अगर हम ग्रोथ नहीं आएगी, किसी की जॉब नहीं लगेगी, नहीं तो वो लोग गए। तो इनको प्रोग्रेस कराना बहुत ज़रूरी है। हमारा डिस्कशन इस पर नहीं होना चाहिए कि यार AI नहीं आनी चाहिए, हमारा डिस्कशन होना चाहिए चलो AI आके क्या करेगी, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन केस AI इज टेकिंग अप जॉब्स, हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम।
ठीक है।
हाउ डू वी हेल्प आर पीपल, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर टेक्नोलॉजी जो आई है वो ह्यूमंस को हेल्प करती है, तो हाउ डू वी यूज टेक्नोलॉजी टू हेल्प। मैं तुमको एग्जाम्पल दूँगा, तुम तो लॉ कर भी रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने पेपर में लिखा था कि यार चलो इज देर अ वे टू यूज AI इन कोर्ट केसेस।
ओके,
लेट से देर इज अ जुडिशियल AI दैट कैन सॉल्व सम छोटा मोटा कोर्ट केसेस।
राइट, ताकि जो ओवरलोड है वो हटे,
ओवरलोड है। हाँ, बहुत सिंपल जो रूल बेस्ड केसेस होते हैं कि भाई किसी का पार्किंग का इशू हो गया है, किसी का और कोई सिविल केस है।
राइट।
तो कैन देयर बी अ पायलट प्रोजेक्ट, राइट, दैट AI कैन बी यूज बाय जुडिशरी टू सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जस्ट रूल्स, एंड इफ इट कैन डू दैट, इफ इट कैन बी प्रूव दैट यस दिस इज पॉसिबल, देन AI कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन सेकंड्स एज अपोज टू डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स।
यस।
प्रॉपर्टी के इशूज हैं, लोगों की प्रॉपर्टी है, बोल रहे हैं भैया डिस्प्यूट हो गया, किसी ने डाल दिया, आपने एक बार पे केप देखा, देखा अच्छा ये तो बिल्कुल वाइट, ब्लैक एंड वाइट है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो इंस्टेड ऑफ द ज्यूडिशरी स्पेंडिंग मंथ्स एंड डेज एंड ईयर्स, AI can do that in matter of days, minutes.
Right.
Minutes. And solve those problems. So this is just an hypothetical example that I wrote in that paper. That paper I called ENAC.
Huh.
ENAC is obviously based on EAC.
Right.
No other reason to call it ENAC except the idea that we should use technology to accelerate our civilization, which is Indian civilization and Indian problems. Other example being, how do we put AI to solve corruption if possible? How do we use AI to, you know, do those things? हमारे रोड्स के जो प्रॉब्लम है, हम कैमरा से लिंक करके जो हाईवे का ट्रैफिक है और हाईवे की रोड्स हैं उसको, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं. ट्रैफिक कितना आ रहा है उसके बेसिस पे हम असर्टन कर सकते हैं उसकी कितनी क्वालिटी, कॉस्ट, मार्किंग, लेन मार्किंग ठीक है कि नहीं है. तो AI भी यूज़ नहीं करनी है उसके लिए, तो उसके लिए तो बेसिक चीज चलेगा. लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम गवर्नेंस अच्छी करें.
बिल्कुल.
10 साल पहले का आइडिया था ई गवर्नेंस का.
हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद है.
तो एनी वे, सम ऑफ दीज आइडियाज आर अबाउट ई गवर्नेंस, सम ऑफ दीज आइडियाज आर अबाउट थिंग्स लाइक हेल्थ, कि डॉक्टर सबको मिल जाएंगे.
राइट.
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये. एग्जाम्पल यार डालना जरूर होगा कि AI टीचर, एग्जाम्पल यू नो, इमेजिन करो कि AI टीचर है.
AI अवतार.
टीचर
ठीक ठीक
प्रोफेसर है जो तुमको ट्रेन कर रहा है, पढ़ा रहा है.
ठीक है.
अब जब एक नॉर्मल टीचर होता है तो दे गेट अपसेट अबाउट यू नो सर्टन थिंग्स इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न फास्ट. दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव देयर ओन मूड स्विंग्स.
सही.
दे कैन ओनली टीच यू एक्स आवर्स अ डे, 5-6 आवर्स अ डे, एंड दे हैव टू गो होम. AI अवतार, AI टीचर कैन स्टे विद यू 24 आवर्स and can understand your needs and your strengths. Kahan pe tum deficient ho, kahan pe tum strong ho. Based on that, it can carve a whole course around
curriculum, right,
curriculum, and then teach you. Then also, not just teach you, but also test you.
Hmm.
Not just test you, but stay with you for the rest of your life. Hmm. To guide you. Chaperone you. Imagine, कितना चेंज आ सकता है हमारे बच्चे, जो हमने बात करी ना स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही ढंग से. ये प्रॉब्लम चली जाएगी यार. अब देखो बायजू पे नहीं जाते हैं, एटेक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया सबको पता है सामने सामने.
राइट.
लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि अपने यहाँ जो यूथ है उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, मेरे ख्याल से तो सोल्यूशन है आज की डेट में. AI से हर यूथ की, इंडिया के हर यूथ की ट्रेनिंग एक AI बॉट से हो सकती है, स्टार्टिंग राइट नाउ. लाइक वी डोंट इवन हैव टू, लाइक वी कैन डू दिस इन लाइक अ मैटर ऑफ मंथ्स. दैट असाइन अ टीचर टू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया, अ मेंटर टू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया.
व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस?
नॉट मच यार,
पर स्टूडेंट स्कूल
कोई कॉस्ट नहीं है.
तो इफेक्टिवली इन
एक्ट, आई मीन इन शॉर्ट, अगर तुम ChatGPT सबको एक दे दो, एक वर्जन ऑफ ChatGPT जो स्टूडेंट वर्जन है, तो $15 है ChatGPT की कॉस्ट मैक्स.
ChatGPT प्लस हेजन प्लस ऐसे 3-4 सॉफ्टवेयर स्टैक किए, उससे एक अवतार बनाया, एक लैंग्वेज मॉडल बनाया और उसको एग्जीक्यूट करके रन कर दिया, पर स्टूडेंट कॉस्ट में भी $100-$150
पर ईयर.
हाँ, पर स्टूडेंट पर ईयर 100.
वो भी US के, मतलब अभी तो ओपन सोर्स मॉडल्स आ गए, मिस्ट्रल ओपन सोर्स है, उसको बस रन करना है. तो ब्लैक पिल एंड व्हाइट पिल. ब्लैक पिल का मतलब हो गया कि यार देखो डूम है, कुछ करने का फायदा नहीं है, इंडिया छोड़ो, जाओ इधर से, अपने घर पे बैठ के डिप्रेस हो जाओ. व्हाइट पिल है कि सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, इनको कैसे यूज़ करें. हम अगर बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तो ये निकल के कैसे चीज़ें आएंगी? जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आइडिया कौन देगा?
सही बात है.
एक बहुत बेस मूवमेंट, जो मैंने बोला ना पॉलिटिकल मूवमेंट तो 1700, 1800 और 1900 वाली हैं, लेकिन अगर एक नई मूवमेंट लाएं कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएं, वो मूवमेंट का नाम IN/AC है, इंडियन एक्सेलरेशन.
लेट मी ट्राई एंड समराइज दिस. ठीक है, मेरे को बताना, मेरे को सही समझ आएगी नहीं भैया. पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल ज़बरदस्त ये कह रहे हो कि जो लास्ट लार्ज स्केल पॉलिटिकल, सॉरी फिलोसॉफिकल अपग्रेडेशन आई है ना, वो 19वीं-20वीं सदी में आई है. अब तक हमने टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेड कर दिया है, और इस अपग्रेडेशन के रहते देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू फिलोसॉफिकल सिस्टम दैट अंडरगर्ड्स, जो नीचे से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ आर थॉट फर्दर. और उस थॉट में एक गली कूचों में एक आइडिया निकला ईएक का, विच इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेशनिज्म. इफेक्टिव एक्सेलरेशनिज्म, जो कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी को फुल एक्सेलरेट करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पास वो पावर है दैट इट कैन कम एंड हेल्प मोर पीपल डू वेल इन लाइफ. सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सकता है, सबके पास बिजली पहुंच सकती है जिसका मतलब सबके घर में गर्मी आ सकती है, राइट, या सबके पास खाने मंडियां लग सकती हैं.
अरे बिजली छोड़ो यार, यह का एक पार्ट है कि फ्यूजन टेक, अगर फ्यूजन टेक आ गया.
फ्यूजन किससे
भाई? फ्यूजन टेक इज अ टेक दैट हैज बीन on the horizon for last 50 years.
Achha.
It is the cleanest form of energy.
Achha, fusion energy. Haan,
fusion haan. energy. Theorized. If you have seen movies like Back to the Future, उसमें वो fusion tech से एक car बनाता है, जो जब वो बाहर फ्यूजन से आता है तो वो केले का छिलका डालता है तो पूरी कार चल जाती है. Example है उसका. But fusion is supposed to use a new material to produce near infinite energy.
अच्छा,
सन रन्स ऑन फ्यूजन, राइट
राइट राइट राइट.
नो रेडिएशन, यू नो, जो न्यूक्लियर फिशन का प्रॉब्लम है,
राइट,
इट एक्चुअली फॉर्म्स यू नो बिगर बॉन्ड्स सो दैट इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन इट यूजेस. अगर वो आ गया तो गली मोहल्ले में जो जनरेटर चलते हैं ना आज की डेट में,
खत्म.
right. अब ये देखो, अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल आ जाएगा.
हाँ.
ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आने वाला है. मैं कह रहा हूं कि इस पे कॉन्वर्सेशन तो हो,
ठीक,
एक होप तो हो,
ठीक.
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बटन दबाया हो गया. मैं बता रहा हूं कि पूरी सोसाइटी को तुम डिप्रेस कर दोगे और उनको बताओ कि नहीं, कि ये चीजें हो सकती हैं, आ सकती हैं, अगर आ जाएंगी तो जिंदगी अच्छी होगी. सुपर कंडक्टर की बात चल रही थी.
हाँ,
बहुत लंबी बात चल रही थी, याद है एक बार?
हाँ, बीच में हमने करी भी है सुपर कंडक्टर.
मैंने बहुत बात करी उसकी.
हाँ.
सो ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो लाइफ अच्छी होगी. अब ये नहीं है कि हमने बोला और आ गई. और ये भी नहीं है कि अगर हमने उस चीज को बनाया. देखो, कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती है,
ठीक,
जादू से नहीं बनती है.
हाँ.
तो ये भी नहीं है कि हमने उस चीज को बनाया और वो फेल हो गए तो हम गिव अप करते हैं.
बिल्कुल,
हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा. उसी को इफेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं.
हाँ.
कि यू work on the path of technology, keep working as a civilization and not be held hostage to doomerism.
Right.
समझ रहे हो आप?
Right.
क्यों? क्या example है इसका? जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट सारे बंद कर दिए.
After World War?
अभी recently.
अच्छा, recently.
Doomerism. न्यूक्लियर टेक को किसी ने बोल दिया कि भाई harmful है, बंद कर दिया. एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल? कोल से.
व्हिच इज वर्स? नो,
व्हिच इज वर्स, एवरीबॉडी नोज दैट.
एट लीस्ट एनवायरमेंटली इज वर्स, राइट.
न्यूक्लियर में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करो.
hmm.
भाई अगर तलवार है और उसका ब्लेड बहुत नुकीला है तो हाथ भी काटती है, सामने वाले को भी काटेगी. लेकिन तलवार और चाकू को अगर उसकी धार पैनी नहीं है तो फायदा क्या है?
फिर रखा ही क्यों है? राइट 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 राइट.
अब न्यूक्लियर टेक हार्मफुल भी हो सकता है बट उससे एनर्जी निकलती है. सो इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ इट, मेक इट बेटर. फ्रांस इज रन एंटायरली बाय न्यूक्लियर टेक, दे आर नॉट स्टूपिड, राइट? दे शुड बी वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग न्यूक्लियर टेक. बट उनका जो कल्चरल माइंडसेट है इस समय डूमरिज्म का, कि नो, बिकॉज न्यूक्लियर टेक कैन अफेक्ट, इट कैन बी यूज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इट कैन अफेक्ट, यू नो, लाइक फुकुशिमा, इट कैन गो रॉन्ग, लेट्स नॉट यूज इट, लेट्स यूज कोल. But by going back to coal, you're actually producing more pollution.
And you're stopping progress.
You're stopping progress. And how do we move forward? Because if we don't move forward, right?
Right.
The moving forward will not happen in an instant. It's a constant movement.
Iterative, inch by inch before a big change happens.
Yes.
Right.
Worst case, what will happen? We'll fail. But at least we would have tried and failed.
Right.
सिविलाइजेशन भूल गया यार ये काम. मैं मतलब इतना सरप्राइज हो गया हूँ कि जब हम बच्चे थे तो हमको ये बोला जाता था कि एक कहावत थी कानपुर में कि जो गिरते हैं वो घोड़े पे चलते हैं, घुटनों के बल चलने वाले गिरते कहाँ हैं, राइट? गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, जो घुटनों के बल हैं चलते वो कहाँ गिरते. पूरा सिविलाइजेशन भूल गया इस चीज़ को यार. नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर दिया है, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी ट्राई नहीं कर रहे हैं. AI आए तो उसके CEO को फायर कर दिया. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये. और जहाँ पे हम लोग इंडिया हैं, जहाँ पे हम लोग दुनिया को देख रहे हैं कि भाई वहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं. हाँ, यहाँ पर भी वही आने वाला है, यहाँ पर भी वही आने वाला है. यहाँ पर तो आ चुका है, यहाँ का न्यूक्लियर प्लांट जब बन रहा था तो साउथ में तो उसका हो गया था यू नो प्रोटेस्ट
हो गई होगी. हाँ, हाँ, तो यहाँ पर भी फुल प्रेशर है.
तो यहाँ पे तो यार अगर ये सब चीज़ें अगर लार्ज स्केल पे आ गई तो हमारी कंट्री तो आगे चलने से पहले पीछे चली जाएगी. तो कैसे इसको एड्रेस करें, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें, लाइफ अपनी अच्छी कैसे करें, इसके लिए एक मूवमेंट है, उसका नाम है इनैक. इनैक का मतलब इंडियन एक्सेलरेशनिज्म. और अपना गोल सिंपल है कि लाइक माइंडेड पीपल को जोड़ के एक नई फिलॉसफी प्रमोट करनी है. कोई पॉलिटिकल पार्टी वार्टी वाला
नहीं है.
बट ये एजेंडा है कि यार इंफ्रा अच्छा करो, अपनी लाइफ अच्छी करो, और ये मैसेज पीपल इन पावर को देना है. क्योंकि टेक लोगों का कोई कोई कभी एक यूनाइटेड
आइडियोलॉजिकल फ्रंट नहीं है, है ना, कोई उनकी कोई यूनाइटेड एक कॉन्वर्सेशन नहीं है. सब सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड है.
किसी के सगे नहीं होते इसलिए.
क्यों? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटलिस्ट, उस माइंडसेट से सगे नहीं होते, या फिर क्या क्या वो क्या रीजन है उसका?
मैं तुमको सच्चाई बताऊं?
सच्चाई बताना, झूठ तो बोलो मत.
मुझे तो लगता है इसलिए क्योंकि वाकई में हाथ यूज़ नहीं करते. हाँ, टाइपिंग करते होंगे लेकिन वो दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाथ नहीं यूज़ करते. मेहनत जो है सारी दिमाग वाली है. एक लैक ऑफ यूनिटी है पूरे, स्पेशली इंडिया में. और वो लैक ऑफ यूनिटी जो टेक में है वो दिखती है. एग्जाम्पल देखो, तुमको बताते हैं. अब शायद कई लोग इस पर उंगली उठाएं. बैंगलोर में कोई भी रोड ढंग की नहीं है. कहोगे बैंगलोर कोई भी रोड ढंग की नहीं है?
हाँ.
आज नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से यही चल रहा है. एक महीना ये लोग हड़ताल करते ना, बोलते हैं भैया ये रोड ढंग की बनाओ. चलो चलो ठीक है, उसके आगे कुछ ना हो लेकिन एक महीना नॉइज बना क्रिएट करते हैं. कोई कुछ नहीं कहता है. कोई सब लोग ट्विटर पे आके कंप्लेन करेंगे ट्रैफिक बहुत है, ये रोड ख़राब, वो रोड ख़राब है. बट कोई भी खड़े होकर एक यूनाइटेड फ्रंट पे नहीं बोलता है कि हम लोग सब साथ में खड़े हों कि काम नहीं होगा महीने भर तक. रख लो सैलरी, रखनी हो रख लो, हम महीने भर तक कोई काम नहीं करेगा जब तक ये सिटी का इंफ्रा अच्छा नहीं होगा. एग्जाम्पल दे रहे हैं यार, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं
एग्जाम्पल, मैक्रो एग्जाम्पल है. हाँ, मैं समझ रहा हूँ.
दूसरी चीज़ ये है कि कंट्री और नेशन के लिए सोचना, ये जरूरी नहीं है कि आप भारत में रहें या बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, आप कंट्री के लिए सोचें, आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो एक थोड़ा लैकिंग रहता है. मैंने पोस्ट भी किया कि जब से अनहैप्पी प्रोफेशन है दुनिया का, जो अपने प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है और सबसे वेल पेड है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ द पर्सन हु इज़ मोस्ट अनहैप्पी विद देयर जॉब एंड इज ऑल्सो वेरी वेल पेड फॉर दैट जॉब.
वाई आर दे अनहैप्पी? आई वुड थिंक दे मेक इनफ मनी टू नॉट बी अनहैप्पी. नो,
वह और फनी है, जितना ज्यादा पैसा बनाता है उतना अनहैप्पी होता है. जो गूगल में काम कर रहा है वो और अनहैप्पी है.
क्योंकि
यार फिर कमिंग बैक टू दैट होल थिंग
कि हाथ से काम नहीं हो रहा,
हाथ से काम नहीं करते हैं तो वो प्राइड नहीं आती है. हाँ. कुछ बनाया है. हाँ. एक जो फार्मर होता है ना, अपने हमने बात करी थी ना यहाँ पे, कभी फार्मर लोगों ने अपना लैंड बेचा, वो फार्मर होता है ना, वो फार्म जब करने जाता है, चाहे वो गुज्जर हो चाहे वो यूपी वाला फार्मर हो, वो अपने फार्म से बड़ा हैप्पी रहता है, काम से बहुत हैप्पी रहता है. मतलब 10 फार्मर से पूछोगे तो चलो, फार्मर सोसाइटी बहुत सारे होते हैं भाई. तभी
हाँ हाँ, पर वो मतलब एक पूरा मनी लेंडिंग और वो वाली साइकिल में ज़्यादा होते हैं.
फार्मर सुसाइड का रीज़न मनी लेंडिंग है. हाँ, बहुत बहुत मतलब खेती फेल होना है,
उनकी रेवेन्यू फ्रेजाइल बड़े होते हैं.
अगर हाँ. वो खेती के पैसा बना सकें तो खेती को बहुत प्यार करते हैं. अगर वो पैसा बना लें, अपनी ज़िंदगी चला लें,
ठीक,
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस खेती से कमाई करना मुश्किल हो जाता है. कभी
मिडल मैन है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत प्रॉब्लम है खेती से पैसे.
लेकिन वो खेती को गाली नहीं देते हैं,
वो सिस्टम को गाली देते हैं.
सिस्टम को गाली देंगे और सही बात है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने काम को गाली देता है यार, ये सच्चाई है. मतलब तुम जानते हो चीज़ को.
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को तो नहीं जानता, फाउंडरों को जानता हूँ मैं. फ्लैक्स.
तो ये एक चीज़ है जो सॉफ्टवेयर की नेटिव है. जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसकी बात समझ रहे हैं वो लोग ये चीज़ भी समझें कि हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी हाथ से काम करना, भला ही वो एक घंटे के लिए खेती हो या 5 घंटे के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो, काम करना बहुत ज़रूरी होता है अपने हाथ से, क्योंकि उससे जो प्राइड आती है, जो कि हमने देखी है US में कि हर, अब तो खैर शायद कम हो गया, लेकिन पहले हर US सबर्बन होम में एक गैराज होता है और उस गैराज के अंदर
जो हस्बैंड होता है वो लगा रहता है अपनी अपनी कुछ इजाद करने में लगा रहता है,
गाड़ी ठीक कर रहा होता है अपनी, उसके बाद टूल सेट होते हैं, एक जगह है जो उसको होम डिपो कहते हैं,
बिल्कुल
उसका पूरा सेक्शन ही सेल्फ टूल्स पे है जो आप यूज कर सकते हैं घर लाके और अपने
बिल्कुल बिल्कुल
फर्नीचर बना सकते हैं ना। होम डिपो बहुत बड़ी जगह है और होम डिपो शायद बहुत बड़ी कंपनी भी है, और होम डिपो इज अ साइन ऑफ अ वर्कर और अ बिल्डर इकोनॉमी। होम डिपो के अंदर, बाय द वे, होम डिपो के अंदर जाओगे तो ऐसा नहीं कि बेड बने दिख जाएंगे,
नहीं मैं समझ गया आपकी बात,
हाँ वो दूसरी जगह है। होम डिपो में तो बहुत मैसिव स्केल पे कारपेंटर का सामान बिकता है
जो लोग खुद के लिए सेल्फ यूज करते हैं।
हाँ हाँ हाँ, अपने ट्रॉली लेके जाओ, वुड लेके आओ, सारा सामान लेके आओ, कील लेके आओ, स्क्रू लेके आओ, हैमर लेके आओ, अपना खुद बनाओ। तो वो एक साइन है ना कि लोग घर पे बनाते हैं, घर पे लाते हैं, गैराज खोलते हैं, उसमें से सामान डालते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, बनाए अच्छा बनाए बुरा बनाए ना बनाए बात दूसरी है, ना बनाए भी होता है, लेके आते हैं। इंडिया में वो बिल्कुल लैकिंग है, और वो अलग अलग रीजंस में है, किसी के घर में जगह नहीं है, किसी के पास टूल नहीं है, टूल है तो एस्पिरेशन नहीं है, एस्पिरेशन है तो टूल नहीं है, दोनों में तो जगह नहीं है।
मेरे को लगता है एक लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है आदमी के पास, लाइक हमारे यहाँ हॉबी कल्चर कितना है,
बिल्कुल नहीं है यार।
हाँ
मैं बता, हिल गया
क्यों
यार, ये बिल्कुल सही बात बोली हॉबी। अबे ये इंडिया कंट्री में मतलब हर बच्चे की हॉबी होती है एट सम पॉइंट, वो भूल जाता है,
भूल जाता है, मर जाती है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ उसका स्प्रेड होता है, बट लास्ट के जो 2-3 घंटे बचते हैं ना दिन के, आदमी उसमें चिंता करता है, आदमी उसमें फिकर करता है, क्योंकि आदमी को पता है भाई अगर रोडे नहीं बनी हुई, पुलिस टाइम पे नहीं आएगी, कोर्ट केस टाइम से नहीं निकलेंगे, तो फिर क्या ही मेरा, कौन मालिक है मेरा। और आई थिंक ये चीज हम रियलाइज नहीं करते कि जो ये कल्चरल ब्लैक होल्स है ना, जो ये सोशियो पोलिटिकल ब्लैक होल्स है हमारे आस पास, दे कंज्यूम और दे सॉर्ट ऑफ ईट आउट, लीक आउट सो मच ऑफ आर पोटेंशियल इन दैट वे। मेरे को अगर पता है ना भाई कि जैसे आई थिंक अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज अ फंक्शन ऑफ देयर सोशल सिक्योरिटी, कि कल को मैं टूट टाट भी गया, क्रेडिट कार्ड पे लोन खींच लूंगा, पीछे से इकोनॉमी देख लेगी। हम यहाँ भाई साहब OTP के ऊपर नहीं उड़े, मैं मजाक नहीं कर रहा, द नंबर ऑफ मैन आवर्स वेस्टेड एवरी डे बिकॉज ऑफ OTPs, इज दैट अ जोक, लाइक वेयर इज, लाइक हाउ, व्हाई आर वी सच अ लो ट्रस्ट इकोसिस्टम। हम, और मैं समझता हूँ क्योंकि स्कैम बहुत होते हैं, दुनिया भर की बातें, लेकिन दैट लो ट्रस्ट इकोसिस्टम, दैट रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर एंड ओवर बिफोर दे अप्रूव एनीथिंग,
ट्रिप्लीकेट, गेट दिस इन ट्रिप्लीकेट,
हाँ, क्योंकि मान, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा वो ट्रिपल में और सिंगल में। एंड सो ये इश्यूज हैं, बट मेरे को, आई वांट टू कम बैक टू इनैक, इनैक का पेपर आपने लिखा है,
तो उसका जो पहला मैनिफेस्टो था वो मैंने लिख दिया था उसमें,
क्योंकि अब वो ट्विटर पे इट इज द रेज, सब लोग वही करते हैं, इंडिया का फ्लैग /ACC हाँ, किसी को लगेगा ACC सीमेंट की एड है।
देखो ऐसा है कि ओपन सोर्स है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है भैया, कोई भी जिसको जाना हो,
कहां पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है,
गिटहब पे वेबसाइट है, ओपन सोर्स वेबसाइट है, उस पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिंक है उसका, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं उसको, अपना कुछ कॉपी करना है, कुछ अपना बनाना बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात ये भी नहीं है कि ये मैनिफेस्टो में कुछ लिखना है, बात यह है कि भैया अपने हाथ से काम करो। परसों जैसे हैकाथॉन हम लोग कर रहे हैं, जब तक ये आएगा तब तक हो चुकी होगी, तो हैकाथॉन होती थी पहले सॉफ्टवेयर की, हमने पहली हैकाथॉन मैन्युफैक्चरिंग करी है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद किसी और ने भी करी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी नॉलेज में मैं पहली हैकाथॉन यहाँ इंडिया पे करवा रहा हूँ, जो टिंकरिंग 25 साल वाले लड़के 20 साल जिन्होंने बेचारे हॉबी भूल के आ गए हैं, उनको कुछ भी बनाने को देंगे, टिंकरिंग करेंगे, फिजिकल स्टफ बनाएंगे, सर्किट देंगे, सर्किट बनाएंगे, भैया एयर कंडीशन कैसे बनता है और वॉशिंग मशीन कैसे बनती है और खोल के देख लो भैया, और रोबोट कैसे बनता है, ऑरेंजवुड लैब वाला रोबोट बना रहा है बढ़िया। तो ये जो एक बच्चों वाला तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब बच्ची वाली चीज़ है कि मतलब हम लोगों की जो एक चाइल्डिश आदत होती है कि खोल के तोड़ के देखें कोई चीज़ की इसमें अंदर। अभी मेरे घर में तो मार पड़ जाती थी यार, मैंने बस घड़ी खोल दी थी, बहुत पिटे थे, घड़ी भी मतलब मैकेनिकल घड़ी जो होती नहीं बड़ी, वो घंटा वाला, अब खोल दी थी पिटे थे, शाली तो घड़ी तोड़ दी। अब हम लोग यार अबंडेंस इकोनॉमी में मूव किए हैं, पहले बहुत खस के स्कार्सिटी थी यार, घड़ी मतलब दोबारा नहीं आएंगी। तो उस टाइम पर टिंकरिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव,
राइट।
अभी टिंकरिंग इज ऑब्वियसली अफोर्डेबल, बट हमारा सिविलाइजेशनल हैंगओवर है कि जो एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे तो हमारे दिमाग में घुस गया कि एक्सपेंसिव है तो अभी भी नहीं करते हैं।
मैं बताऊं भैया से कैसे कहता हूं, कल एक लड़का मेरे से कहता है मेरी चैट में स्ट्रीम पे, कहता है भैया मैं ना पहले मोटा था, अब मैं पतला हो गया हूं, लेकिन ना मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं बोला तू दिमाग से मोटा है, ठीक है, ये होता है, जो मोटे लोग पतले होते हैं दिमाग में मोटे रहते हैं। हम अमीर हो रहे हैं पर हम दिमाग से गरीब
हैं। बिल्कुल सही बात बोली,
हम दिमाग से गरीब हैं, हमारी प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से इनैक इज अ वेरी गुड प्लग हियर, बिकॉज इनैक का पर्पस ही है भाई चलो खुद भी और सबको लेके फास्ट अमीर होते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके।
यार इनैक का काम एक ही है कि भाई हम कॉलेज कॉलेज जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि अगर तुम हाथ से कुछ बना लेते तो उसकी ज्यादा वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है, और उसके रास्ते आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो, बिजनेस बना सकते हो और कंट्री भी आगे बढ़ेगी और उसी के रास्ते अपना फ्यूचर है। अपना फ्यूचर हाथ से बनाने के रास्ते है, क्योंकि हम अगर नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे, कभी ना कभी बनाएंगे। अगर हम कभी भी नहीं बनाते हैं तो भारत का आगे फ्यूचर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है यार। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की है, 4 ट्रिलियन की है, और उससे हमको 6% खींचना है हर साल,
हाँ,
या 8% खींचना है, तो 8% ऑफ 5 ट्रिलियन अगर तुम पकड़ लो,
हाँ,
तो 400 बिलियन ऐड करना है। आज की डेट में अगर इकोनॉमी 6% खींचती है तो वो 2 ट्रिलियन पे 6% खींच रही है या 3 ट्रिलियन पे खींच रही है, तो बहुत छोटा नंबर है।
राइट 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 राइट,
बात समझ रहे हो?
हाँ, हाँ, मैं समझ रहा
हूं। तो 5 पे 6% मारना, फिर 6 पे 6% मारना, फिर 7 पे 6% मारना,
वो भारी काम है।
अरे बहुत भारी काम है यार,
राइट।
अब समझ लो हम 5 के पास पहुंच जाते हैं, अगर हम वहां रुक गए तो फिर तो लोअर मिडिल इनकम और ब्राजील बन गए,
फिर हम ब्राजील बन गए,
फिर हाई क्राइम कंट्री ग्रो नहीं कर रही है,
वो इनइक्विटी के जो डाउनसाइड्स हैं, जो सेपरेशन ऑफ इनकम के
डाउनसाइड
हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्योंकि एक लेवल के बियॉन्ड एक जनरेशन रुकेगी नहीं, एक लेवल के बियॉन्ड बोलेगी यार देखो अब एक्सेस टू कैपिटल नहीं मिल रहा है तो सड़क पे जाके। ब्राजील में एक टाइम है, टाइम था कि भैया पहले जा रहा था कार से और उसका हाथ पकड़ लिया, कोई घड़ी थी और घड़ी निकाल ली हाथ से, और दूसरा आदमी कोई था तो उसका हाथ ही काट दिया कि भाई घड़ी निकालनी थी, एक टाइम ये भी था। ये टाइम आ सकता है इंडिया में कि भाई एक जनरेशन बोले जिनको नहीं मिल रहा है सब कुछ कि यार अब देखो बहुत हो गया, और वो अगर हम 5 ट्रिलियन पे 500 बिलियन ना ऐड कर पाए, 6 पे ना ऐड कर पाए, 7 पे ना ऐड कर पाए, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो ऐड करने के लिए अभी से प्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही वो नंबर आएगा, लोकल नंबर वही बनेगा,
प्रोडक्शन बीइंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हार्ड स्टफ,
हार्ड स्टफ।
और चाइना की भी ग्रोथ स्टोरी यही है, उन्होंने भी इसी तरीके से एक्सेलरेट किया है,
करेक्ट।
और वो अगर एक हार्डवेयर लेयर बनती है तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर डालना और आसान और यूजफुल हो जाता है, एम्पलीफिकेशन हो जाती है,
करेक्ट करेक्ट। चाइना की देखो, चाइना का भी देखो अपने प्रॉब्लम है कि कल्चरली उस कंट्री ने बहुत अचीव किया, लेकिन क्वालिटी वाइज अभी भी ऐसा नहीं है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को जापानीज प्रोडक्ट के ऊपर खरीदें,
नहीं, क्योंकि वो सेम क्वालिटी नहीं है,
करेक्ट।
हाँ, राइट राइट।
आप ऐसा नहीं है कि आप कोरियन प्रोडक्ट को, सैमसंग इज स्टिल बेटर एज अ फोन, तो नाउ दे हैव टू एड्रेस अ प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी,
राइट राइट। फर्स्ट इट वाज वॉल्यूम,
यस,
एंड देन इट इज क्वालिटी,
यस,
राइट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, राइट,
एंड क्वालिटी कैन ओनली कम फ्रॉम प्राइड,
प्राइड, दैट इज अ बिग वन, बिकॉज़ यू केयर, बिकॉज़ यू केयर व्हाट दैट लुक्स लाइक फॉर योर ब्रांड, योर ब्रांड बीइंग इंडिया,
कारीगरी, जो कारीगर होता है, जो घर बनाने आता है मिस्त्री। अरे कई कई कार्यकर देखे मैंने यार, वो अपना जान लगा देते हैं, लाइन सीधी होनी चाहिए, कन्नी सीधी होनी चाहिए, बढ़िया काम करते हैं, कई लोग को फर्क नहीं पड़ता है,
सही बात
है ना। तो कैपिटल की वजह से नहीं, 20 साल पहले भी कारीगर बनाते थे, मैं घर में एक बार दीवार बन रही तो कारीगर आया था काफी दिमाग से, उसने बहुत सही दीवार बनाई थी, राजस्थानी आदमी था, मेरे ख्याल से वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था कि आज मुझे पैसा जरूरी है, खाना भैया किसको जरूरी नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन वो ही डजंट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से आज मैं पैसा कमाऊंगा इसलिए मैं काम करूँ, नहीं, उसको काम बहुत अच्छा लगता है अपना, कारीगर कहते हैं उसको, जो कारपेंटर की बात मैंने करी, वो बहुत अच्छे काम से, मतलब ऐसी बढ़िया मेज बनाएगा, बैठ के अपना दिमाग लगाएगा, अपना खून पसीना बहाएगा, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, पैसा इज अ साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट एवर ही डज, बिकॉज ही टेक्स प्राइड इन हिज जॉब, प्राइड, प्राइड नहीं है यार, प्राइड,
हाँ, एक एक हमारा लो सेल्फ एस्टीम नेचर है एज अ कंट्री, हम अपने आप को, मतलब अब इंडियन है, अब इंडियन है, लाइक And I'm not saying, मतलब honestly, कोई फोन नहीं है जो आईफोन से कम्पीट करता है जो इंडिया में बनता है, कोई गाड़ी नहीं है जो टेस्ला से कम्पीट करती है जो इंडिया में बनती हो, तो मैं एक रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से बात समझता हूँ, बट जब हम पेट्रियोटिज्म वगैरह की बात करते हैं कल्चरली, हमें लगता है कि ये लार्जली इट इज सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड सच. दिस इज अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव कि पेट्रियोटिज्म इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक सॉर्ट ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स.
देखो जापान का इतना कम एरिया है, पूरा हिली कंट्री है, है ना. जापान का एरिया हम लोग जब देखते हैं बोलते हैं एरिया काफी ज्यादा है, काफी उसकी डेंसिटी की बात नहीं होती. जापान जाकर देखना, वो पूरी कंट्री हिली है भाई. वो कंट्री में 3-4 वैलीज हैं, उस वैली एक वैली में तुम्हारा टोक्यो ओसाका है ना, पूरा पूरा बड़ा एरिया है. दूसरी वैली उस साइड है, 3-4 वैली में पूरी कंट्री है. तो उनके पास जगह नहीं बची,
नहीं
हिल्स हैं सारे बाकी,
राइट.
उसमें जितना निकालना है निकाल ले. वो कंट्री बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा प्राइड है उस कंट्री में. सड़कें भी साफ करके रखेंगे, नालियों के अंदर वहां पे फिशेस, कोई फिश होती है नालियों के अंदर, बिल्कुल क्लीन नाली होती है, बिल्कुल वाटर बिल्कुल उसमें मतलब क्लीन होता है.
नालियों में
कोई फिश होती है नालियों में? हाँ, कोई फिश. हाँ, भेजेंगे तुमको. तो वो जापानीज प्राइड और इतना. अभी देखो जापान को लोग बोलते हैं यार उसका स्टैग्नेशन आ गया. अरे वो जिस उसमें रहते हैं ना,
वो यहाँ तक पहुंच गए बहुत है.
अरे उन्होंने बुलेट ट्रेन 1950s में बना दी थी भाई,
मैग्लेव करके होती थी,
मैग्लेव तो इन्हीं की थी. अभी तो खैर मैग्लेव इज अनदर टेक्नोलॉजी, बट बुलेट, नॉर्मल बुलेट ट्रेन. वो कंट्री ने सब बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी जानते हो, ठीक है. जगह नहीं बची उनकी कंट्री में, उनके अदर रीजन है, बट प्राइड बहुत नेटिव है. I somehow do not see that pride in China for various reasons, and this is my own personal belief. I hope people don't get upset. India has to get that pride right, because sooner or later we'll hit that problem. German pride suni hogi, German pride.
बहुत pride होती थी, which got negated after World War II. है ना, तो फिर उनको defeat लेना पड़ा उस pride के against, and they never could come back from it.
नहीं नहीं यार, BMW pride है यार, Mercedes pride है, क्या बात कर रहे हो यार. आज की डेट में भी Audi में भी बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो यार.
Swiss watches are pride for Swiss people.
Swiss watches, sorry बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही
है, लेकिन Patek और ये सब जो होती हैं,
Patek Philippe यार. Swiss watch is a very interesting industry because the people who are making those watches have never outsourced that to
anyone.
They don't outsource it. They Swiss people are very proud of making those watches. They're very proud. They go work 8 hours a day to make those watches. And they don't hire, you know, people in other countries to lower their cost. Yes, ala lowering cost wala ek.
ये एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन जारा और ये वाला जो है कि बांग्लादेश में बनवा लो, इंडिया में बनवा लो, और फिर उसका कुछ.
इमेजिन क्या अगर स्विस वाले बोले यार देखो सस्ते में बनाते हैं यार, बढ़िया इसको भेज देते हैं चाइना बनाते हैं. ऐसा नहीं है. देखो प्राइड बहुत नेटिव होती है, और एक मेड इन इंडिया वाली जो चीज है वो इंडिया में थोड़ा सा सरकास्टिकली यूज हो जाती है, मेड इन इंडिया तो नहीं लेंगे. इमेजिन यार, मतलब हमारी कंट्री में अगर प्राइड ही नहीं है तो आगे कहाँ जाएगा. तो इन एक भारत का पहला छोटा सा मूवमेंट है, बहुत छोटा मूवमेंट, दो लोग हैं तुम और हम, कोई है ही नहीं इसमें, ऐसे सोचो. लेकिन एक मूवमेंट है भाई जो इंडियन प्राइड की बात करता है, जो बात करता है कि इंडियन प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें हम लोगों का कल्चर होना चाहिए, हमको अपना एलिमेंट डालना है, और वी हैव टू बी प्राउड एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. देखो इस तरह सोचो कि तुम ये बोलो कि यार देखो हम नहीं करेंगे, हमारी अगली जनरेशन करेगी, और अगली जनरेशन के पास कोई आइडिया नहीं है. हमारी जनरेशन जो है, जो मतलब ऐसे तुम लोग हो गए यार, हमारी जनरेशन निकल गई, वो जनरेशन 18 से 35 के जो लोग हैं वो सारी वॉर करते हैं, जाके लड़ाई करते हैं, सारा काम करते हैं, और उसके ऊपर जितने लोग होते हैं वो बैठ के प्लानिंग करते हैं, नहीं तो वॉर के बाहर बैठे होते हैं, राइट.
ठीक.
मार्गदर्शन एक्सपीरियंस हमारी जनरेशन पर रहता है, काम रहता है 18 से 30 वालों को,
मेरी जनरेशन पे.
हाँ, राइट. अगर एक जनरेशन क्लूलेस निकल जाती है तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि वो क्लूलेस जनरेशन अगली जनरेशन को मार्ग दिखाते. फिर उसके बाद चीजें खराब ही होती रहती हैं. मैं वापस जा रहा हूँ, भारत ब्रिटिश के अंडर ऐसा नहीं हुआ कि पहली जनरेशन जो 1857 वाली थी वो जो लड़ाई करके हारी हो तो उसकी बच्चों ने पिकअप कर लिया हो. इट टुक 100 ईयर्स
जनरेशन का लूप लगा.
हाँ, 3-4, क्योंकि उस जमाने में तो खैर जनरेशन छोटी भी होती थी, 25-25 साल में मतलब आदमी बड़ा हो जाता था. तो समझ लो 4-5 जनरेशन लग गई भैया. ऐसा नहीं हुआ कि ये सट से चालू हो गया. ये चीज हम लोग बहुत गलत सोचते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कर लेंगे. नहीं, ये गया, ये 100 साल के लिए गया. अगर हम नहीं करेंगे, समझ रहे हो, तो कोई नहीं करेगा. हमें करना चालू करना है अभी. ये अर्जेंसी समझ में आएगी नहीं तो आदमी देखो, भारत का जो इंडिपेंडेंस का जो सीन था वो जैसे पकड़ो तो बाल गंगाधर तिलक वगैरह से चालू हुआ था. वो बहुत लेट आया था 1857 के बाद. समझ रहे हो, इट वॉजेंट लाइक कि है ना,
इट डिड नॉट कंटिन्यू, देयर वाज एन अब्रप्ट एंड एंड देन इट बिगन अगेन, है ना, यही कह रहे हो.
उसके वो और वो भी पकड़ लो तो वो चीज भी उस जमाने में थी जिस जमाने में मतलब इंडिया एज अ कंट्री, पूरी जो कंट्री हमारी थी वो मतलब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थी. बहुत राजा थे उसके, बहुत छोटे 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 राजा थे. तो इंडिया का नोशन बनते बनते थोड़ा टाइम लग गया,
है ना. यूनिफाइड इंडिया,
मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लोगों को. भैया ये बताओ कि आजाद चंद्रशेखर राजा का नाम सुने हो, उसकी उम्र कितनी थी जब वो मरा था?
23-24.
बस बस बस
भगत सिंह 24
बस बस, समझे बात को?
बिल्कुल.
तो वो 25 साल वाला 24 साल वाला 1906 और 1907 में बॉर्न हुआ था. 1857 के बाद 1907 में बॉर्न हुए थे ये लोग.
40-50 साल का लूप.
हाँ, ये समझे बात को. ऐसा नहीं होगा कि हमने नहीं किया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी. सक्सेसिवली खराब होती है, और वो भी ब्रिटिश थे जिन्होंने काफी टॉलरेट किया. अगर ये कोई और होते, जर्मन वर्मन होते, तो कहो साफ कर चुके होते. और अमेरिका ने यही किया. अमेरिकन इंडियन साफ हो गए भैया वहाँ पे, ये तो पता है चीज को.
अमेरिकन इंडियंस, नेटिव इंडियंस,
नेटिव इंडियंस को पूरा वाइप आउट हो गए.
इनको मौका ही मत दो, मौका ही मौका मत दो. जनरेशनल जो सिविलाइजेशनल विजडम है उसे खत्म कर दो, उस आइडेंटिटी को नस्ते नाबूद कर दो, ताकि उसका कोई रूट ही ना रहे.
बस बस बस. सो ये अर्जेंसी होनी चाहिए. अर्जेंसी का मतलब समझते हो कि मतलब ये नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. ऐसी भी जल्दी किया है जब जीना है बरसों.
मेरे को दो क्वेश्चन है इसी टेंजेंट पे, और शायद ये दो क्वेश्चन काफी कंक्लूसिव क्वेश्चन है. एक भाई, मैं रीजनेबल बात कर रहा हूँ, और एक और पॉडकास्ट में मैं ये एड्रेस करना चाहूंगा आपके साथ. एक आदमी है भाई, ठीक है, जो आपकी बात सुनता है, जो इस पॉडकास्ट को सुनता है और कहता है यार हाँ यार इस बात में दम है, क्योंकि मैं वो कलेक्टिव सेंटिमेंट फील कर सकता हूँ जहां मैं एक आइडेंटिटी इंडिया के लिए कुछ करना है. ठीक है, वो घर जाता है, दो दिन बाद पॉडकास्ट सुनने के उसको रियलाइज होता है भाई मंथ एंड आ रहा है, पैसे नहीं है. और वहां से एक चक्रव्यूह शुरू होता है जो उसकी पर्सनल नीड्स ओवर कलेक्टिव नीड्स. आप समझ रहे हो कि अब मेरे को यार, मेरे को अपना ध्यान रखना है, मेरे को भी तो वो गाड़ी चाहिए, मेरे दोस्तों के पास भी तो ये है, मेरे पास भी तो गर्लफ्रेंड हो या मेरी बीवी भी तो इस तरीके से खुश हो. उस लूप में फंस जाता है, और फिर ये जो चीज है ना, ये सेकेंडरी टर्शरी, धीमे धीमे इट गोज डाउन द सॉर्ट ऑफ रैंकिंग, राइट, ऑफ प्रायोरिटीज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, आई एम नॉट सेइंग समबडी शुड बी लाइक मेरा पर्सनल बेनिफिट जाए भाड़ में, मैं तो सिर्फ देश के लिए ही करूंगा. वो भी मैं एडवोकेट नहीं कर रहा. मेरे को लगता है एक हेल्दी तरीका है ये दोनों चीजें अलाइन करने का, आपके पर्सनल इंसेंटिव्स और आपके कम्युनिटी इंसेंटिव्स, बिकॉज दीज कम्युनिटी इंसेंटिव्स आर एक्सटर्नैलिटीज दैट विल कम इन टू योर पर्सनल इंसेंटिव स्ट्रक्चर. कल को अगर इंडिया चाइना में वॉर होती है, टचवुड नाउ, बट अगर वॉर होती है, उस वॉर का कॉन्सिक्वेंस तुम्हारी जेब और तुम्हारे वॉलेट पर भी होने वाला है. सो इट इज नॉट लाइक कि आई कैन बी रिच विदाउट वरिंग अबाउट वॉट माई कम्युनिटी लुक्स लाइक. However, if I am completely community oriented and I think मैं तो सिर्फ देश के लिए करूंगा, you will only grow up with a sense of betrayal because the world doesn't care, the world is very ugly, the world doesn't bother, you'll never make money, your friends will all make money and so on. So, इस incentive structure को enact के under, how do you unify that? That's question one. And two, maybe it is tied, is what is, give me the utopic image after this enact or sort of any accelerationist, any technologically guided philosophy for Indians is realized. What is the future look like?
So, देखो एक चीज समझो बात को. जैसे ये माइंडसेट का चेंज है थोड़ा सा. भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत मेंटली आजाद आज तक नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेंटल स्लेवरी, जो मानसिक स्लेवरी होती है, दास्ता, मानसिक दास्ता, वो कल्चरल होती है और वो फिज़िकल भी होती है. जो फिज़िकल स्लेवरी है दैट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ यूजिंग द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस एंड थिंग्स दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस, लाइक लैक ऑफ यूजिंग द थिंग्स दैट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग.
सो डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल फॉर योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
डिपेंडेंस ऑन अदर कल्चर्स,
राइट,
अदर कंट्रीज,
राइट,
फॉर योर एग्जिस्टेंस,
राइट,
फॉर योर बेस एग्जिस्टेंस, कि अगर वो हाथ खींच लें तो आप गए. फिर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि यूक्रेन की बात कर रहा है, रशिया की बात कर रहा है, ये सब वो सब जो भी है. कि तो एक एग्जांपल दे रहे हैं यार, आप जिस साइड भी हो, यूक्रेन और रशिया के जो इशू हुआ तो यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया और रशिया अकेले. रशिया ने क्या किया कि इंटरनली प्रोड्यूस करना शुरू किया, चाइना से हेल्प लिया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने झेल लिया और अभी दुनिया का प्रेशर और प्रोड्यूस करा अंदर इंटरनली, और आज की डेट में वो जीतने के
कगार पे हैं.
क्या इंडिया जब इस पोजीशन पे हो तो कर सकता है ऐसा काम? आप सोच सोचिए
कि अगर उसको पूरा जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आइसोलेट कर दे इंडिया को, तो क्या इंडिया सेल्फ सस्टेनिंग एक फाइट फाइट कर सकता है कि नहीं?
तो इसको एग्जांपल के तौर पे आप ले रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन,
राइट,
हम ये कह रहे हैं कि ये दिस विल क्रिएट एन अर्जेंसी कि चलो ठीक है, जॉब तो हमें करनी ही करनी है और हमको मंथ एंड में हमको सैलरी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है ना. इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे होता है, वो करने का काम शायद सारे लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का है. सो लीडरशिप इज फ्यू पीपल, राइट? जनरल्स आर फ्यू, सोल्जर्स आर मैनी. दोज फ्यू पीपल हैव टू कम अहेड, मे बी इट्स यू, राइट, मे बी समबडी एल्स, एंड देन से ओके वी आर गोइंग टू टेक दिस रोल, हम लोग ये करेंगे. हम यू नो, यू स्पोक टू संजीव सान्याल, लेट्स से यू ब्रॉट दिस अप एंड यू सेड लुक आई रियली सी दिस एज अ important subject, and then we drive a conversation कि चलो अभी क्या कर सकते हैं, चलो किसकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंडिया को जरूरत है, हमें करना है. क्या हम नहीं कर सकते हैं? अरे इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस एक्सपोर्ट की, वो MKU है. MKU कहाँ पर है?
कानपुर में.
कानपुर में है. ये चीज हम लोग रोज क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम लोग को हर चैनल पे, हर फोरम में तो ये बोलना चाहिए कि इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी जो नेटो को सप्लाई करती है, जो 66 कंट्रीज को सप्लाई करती है, वो कानपुर में बनाती है. दैट मींस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इधर ऑन टैलेंट और ज्योग्राफी, बिकॉज यार इन आर माइंड वी थिंक ऑफ बैंगलोर, वी थिंक ऑफ
पुणे,
हैदराबाद, चेन्नई. वी डोंट थिंक ऑफ कानपुर एज अ प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया.
इनोवेटिव टेक,
नाइट विजन ग्लासेस बन रहे हैं कानपुर में, बन रहे हैं, क्या बात कर रहा है, बड़े बन रहे हैं भाई, रियल है. वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उसको भी इंडिया को बेचना नहीं, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलता है बाहर से. दैट्स अनदर स्टोरी, बट इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ वाइट पिल,
राइट,
विच मीन्स दैट इट कैन बी डन. विच मीन्स जो अभी बोला ना कि जो आदमी मंथ एंड में सोच रहा है कि उसकी सैलरी आएगी नहीं आएगी, वी कैन कन्विंस दैट पर्सन दैट दिस इज पॉसिबल. थोड़ा रुक जाओ, ये पॉसिबल है. ये तो नहीं बोल सकते कि पॉसिबल नहीं, कानपुर में कर दिया है, राइट?
ठीक ठीक ठीक, अंडरस्टैंड.
एक सोलर इंडस्ट्री है नागपुर की, वो ड्रोन बना रही है. आइडिया फोर्ज के बारे में हमने बात करी,
राइट?
मैंने 2-3 कंपनी में पर्सनली इन्वॉल्व अपने आप को किया है, जिसमें ड्रोन का काम चल रहा है, लेजर का काम चल रहा है, काफी चीजों का काम चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है. कल्चरल चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कल्चरली थोड़ा सा एक मेंटल स्लेवरी है. मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज, आईटी सर्विस कंपनी जब से आई है, तब से एक और मेंटल स्लेवरी आ गई है, सर्विसेज मेंटालिटी.
ये जो आप बीपीओ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो कि वी आर एंसिलरी टू अ मेन यूनिट समवेयर एल्स एंड दैट हैज प्रोड्यूस्ड अ साइकोलॉजिकल,
जो कि देखो तुमने बहुत सही बात बोली कि वो जॉब प्रोड्यूस करती है, कोई खराब बात नहीं, खराब बात नहीं,
खराब बात नहीं,
खराब बात नहीं है, खराब की बात नहीं कर रहा,
उसके आफ्टर सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा. हां,
और देखो सीधी सी बात है, जैसे बोला कि अबंडेंस माइंडसेट में हर चीज की जरूरत होती है, वो भी हो ये भी हो,
राइट?
तो मेंटल स्लेवरी कुछ लोगों में हो और कुछ लोगों में अगर ना हो तो भी अच्छा है. और वो हम अगर इस रूट के थ्रू करें तो जो लोग फेंस पर हैं, फेंस सिटर पर, जो लोग कन्विंस हैं कि पॉसिबल नहीं है, ब्लैक पेल है भैया, हमें अपने घर में जाना है, सोना है और खाना है और यू नो निकलना है, तो वो ठीक है. पर अगर हम लोग ये 30% लोग जो इंटरेस्टेड हैं, उनको जो फेंस पर बैठे हुए हैं 10-15%, उनको मूव कर लें इस साइड,
और उसमें से 2% लीडरशिप निकला है,
अरे बस तो काम हो गया,
समझ जाएगा. हाँ, ठीक 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 ठीक.
तो इस पॉडकास्ट के जरिए अगर एक आदमी, एक औरत और एक यू नो व्हाटएवर
बच्चा
जो भी हो, एनी पर्सन, वी कैन गेट इवन 1% एग्रेसिवली इंटरेस्टेड इन लीडरशिप एंड दे टेक दिस मेंटल. टर्मिनेटर मूवी देखी है ना?
हाँ.
वो बच्चा एंड में स्टार वो बनता है, फ्यूचर लीडर बनता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, राइट?
राइट.
एक लीडर निकल जाए, अपना काम हो गया यार. अपना काम हो गया. देखो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक लीडर निकल जाए, दस निकल जाए, मेरी प्रॉब्लम है कन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है. तुमको कन्वर्सेशन करना पड़ रहा है मेरे साथ, और या हम दोनों के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी.
राइट.
तो ये अपने को सॉल्व करना है. कन्वर्सेशन हो, लोग अपने घर में बात कर रहे हैं जब वो डिनर पे खा रहे हैं और कॉरिडोर्स ऑफ पावर डेली में बैठे हुए हैं. तो बड़े बड़े लोग बात करें यार कि देखो ये आइडिया आया है, डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक सेंस. Let's say they say it doesn't make sense. I'm okay with that. I'm okay with that.
As long as the conversation begins, huh?
At least have a conversation.
Right.
Maybe 10 people, out of 10 people, 5 will say this is good.
Right.
5 will say this is bad. Those 5 people who say this is good can contribute.
Right.
And then we move forward.
Right.
And if as a collective we say, nahin, this is a bad idea, we're not going to do it. Then I will be very happy because at least we had a discussion. We reached a conclusion. We move on with our lives.
And we move forward from there. It is not like you move back, nah.
Exactly.
Like technology and ideology, once you step in, you only move forward to solve the problems, never backwards.
Exactly. We move on, we do other things. But if we don't have a conversation, we are stuck. The other part of this is, since India is democratic, the conversations can only start with us, you and I, bottom up.
Right.
We can't expect the Prime Minister of India to come on TV every day and give a policy.
In
Bhashan.
Fact, Mr. Sanyal told me, I don't know if that came on camera or not, but the government's also not interested. The government's fast moving towards removing themselves from business spaces.
Perfect.
They're like, private industry handle karegi. Hum sirf infrastructure provide karenge, bureaucratic and otherwise.
Sanyal sir, big fan.
Yeah, let's go. So I understand. I see what you're saying. And I think you are right to some degree. This is a very interesting angle. कि हम एक Indic lens से, एक civilizational lens से, एक optimistic of ourselves lens से future कैसे imagine करें. और उसमें technology जो building block होने वाला है. क्योंकि जब हम when we go to history and we romanticize history also ना हमारे Indic end से, what we romanticize is the great things that could have existed then. हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, नालियों की बात करते हैं ना.
Correct.
कि उस time नालियाँ, because that was the latest tech.
Drainage.
Right. And then when we come a little bit further, maybe around 800 BC, 800 AD, we talk about एक civilizational stasis कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई किसी को मार काट नहीं रहा था, खूब पैसा था, खूब abundance थी, because at that point we'd arrived at a place जहाँ सोने के सिक्के हैं और दुनिया भर की like पैसा is an object, right? अब we are at that place where software and hardware and infrastructure on that level, वो cutting edge है, that is going to create economies of magnitude in the next 100 years. And so I think it's a very interesting point of view overall.
यार ढोलावीरा में गया था तो मैंने वो जो उनकी ब्रिक्स थी मैंने वो देखी थी. फिर एक सेटलमेंट है जब मैं गया था विशाखापट्टनम तो एक हिल के ऊपर एक सेटलमेंट है 2000 साल पुरानी ब्रिक्स हैं. वो ब्रिक देखी है और वो ब्रिक उस टाइम की ब्रिक आज की ब्रिक से बढ़िया थी. तो इमेजिन आज से 3,500-4,000 साल पुरानी ब्रिक्स अलग अलग जगह जो देखी है मैंने, उनकी क्वालिटी आज की ब्रिक्स से अच्छी है. वो मुझे यही बताता है कि हमारा सिविलाइजेशन वॉज वेरी एक्टिव इन मेकिंग स्टफ, मेकिंग थिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ड्रेनेज एंड टेम्पल्स एंड स्तूपस, और वो हम पूरा सिविलाइजेशनली उसको भूल गए और फिर फ्लिप हो गया पूरा.
बिल्कुल.
फॉर वेरियस रीजंस.
In fact, to what reasons are is a very interesting question also. क्योंकि ना ये somewhere around 1100-1000 AD ना एक attitudinal shift आता है कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, we will not trade with the world. अगर आप बाहर जाओगे आपकी caste lose, and that sort of is a symptom or the reason for which you know that.
1192 में 1192 हारे थे वो
गौरी गजनी वाले पूरे उसकी बात कर रहे हो एपिसोड की.
तो तब से है. बट without going into history obviously, which is obviously very
complicated, mired in politics and so on,
and very interesting.
Yeah.
I'm also very interested in that. I think what I also made a post about York in England, which has these nice 500-year-old pathways and streets and homes, 800-year-old homes. मैं पोस्ट पॉज किया यहाँ पे तो जितनी चीज़ें तो जला दी गई. तो 1730 के आसपास नादिर शाह दिल्ली आया, पूरा दिल्ली जला दिया. राइट.
बिल्कुल
है ना.
राइट.
फिर वो अब्दाली आया,
फिर उसने जला दी.
17 पानीपत की बैटल में 1760 के राउंड जला दिया.
हाँ.
सबको मारा. ये इतना काम सबको मार के चले गए, सबको मार के चले गए दो तीन बार ऐसा हुआ ना, तो यार अभी 1760s में न्यूयॉर्क बन रहा था यार, राइट right? वेस्ट में तो पूरा ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड बन चुका था,
तो वहाँ तो 1100 में बन गया था भाई,
हाँ. That's यार वहाँ की इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल मजे में चल रही थी, यहाँ क्या तो लोग लेफ्ट राइट लाते और जगह जला के मार के खत्म कर देते, सक्सेसिव जनरेशन को मार दिया,
राइट
तो यहाँ के रूट्स लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो जापान में भी नहीं हुआ
इतना बुरा हाल, तो
इतना बुरा हाल,
हाँ.
और वो हाल दुनिया में आई वुड से कहीं नहीं हुआ है, टर्की में भी नहीं हुआ है, जो मैसिव ब्लड बाथ, सिविलाइजेशनल ब्लड बाथ, इवन इन 1700s 1857 में कानपुर को पूरा साफ कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, उठा के पूरा सबको, जब म्यूटनी हुई थी फिर ब्रिटिशर्स ने पूरा दबा के रखा पूरा, ब्रिटिशर्स का फंडा बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर साफ फंडा था, भैया देखो खाना नहीं देंगे जब तुम्हारा अकाल पड़ेगा तुम लोग मरोगे, ऐसे सक्सेसिव अकाल हर तीन तीन साल में, मतलब हमारी तो जीन चेंज हो गया यार, अपनी जो पूरी बॉडी की जो फिजियोनॉमी वो पूरी चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग इतने सारे अकाल पड़े, तीन तीन साल छह छह साल में अकाल पड़ रहे थे,
इंजीनियर
स्टार्वेशन जो 1942 तक हुआ, ऐसे नहीं कि 100,000 10,000 नहीं, ऐसे लोग लाखों,
बंगाल का फैमिन कितने लोग मरे कोई हिसाब ही नहीं है,
कोई हिसाब ही नहीं, 9 मिलियन बोलते हैं, कोई 50 मिलियन बोलता है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब 9 मिलियन 50 मिलियन आप समझो, 9 मिलियन भी बहुत है यार,
हाँ,
और एकदम से 5 करोड़ बोल रहे हो, तो अदर पार्टीज की ये सारा तब हो रहा था जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, जापान यूएसए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था, पूरा टर्की ओटोमन चल रहे थे बढ़िया अपना पूरा, तो ऐसा बड़ी कोई ज्योग्राफी थी नहीं जिसमें इंडिया ऐसी बड़ी ज्योग्राफी जिसमें बिल्कुल हाहाकार नरसंहार चल रहा हो, तो 1947 तक तो ये चला, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई ठीक है उसने बोला कि यार देखो धीमे चलते हैं, ग्रो नहीं करते, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करते, आराम से चलते हैं, सोशलिज्म लगाते हैं, पर उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया. आज की डेट में 2023 में हमारी कंट्री ने अपना प्लेन तेजस जो बनाया है उसमें भी इंजन बाहर का यूज़ किया है, है ना, तो चलो ठीक है हमारे रीजन्स हैं, बट मैं खड़े होकर बोलना चाहता हूँ भैया अभी हो गया, अब इनैक करते हैं और अपना प्लेन और अपना इंजन बनाते हैं. चलो क्या लगता है तुमको, एग्जांपल दें, मैं हैकाथॉन करता हूँ उसमें सिर्फ प्लेन की डिज़ाइन की बात करेंगे, चलो फिर अगली हैकाथॉन करेंगे, टेक्नो फेस्ट है टर्की का, टर्की इज द वर्ल्ड लीडर इन ड्रोन्स, यू नो दैट राइट,
आई डिड नॉट,
इट्स अ वर्ल्ड लीडर इन ड्रोन्स, इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मोर ड्रोन्स देन इन डॉलर वैल्यू देन यूएस एक्सपोर्ट्स मोर ड्रोन्स, बट उनका एक टेक्नो फेस्ट है, हैकाथॉन टाइप है जहाँ पे सारा वो पूरी कंट्री के बच्चे और यूथ आते हैं और अपने अपने ड्रोन्स बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं यार हम लोग करते हैं 5 साल बनाते हैं, 5वें साल इंजन्स पे डालते हैं, अपने इंजन्स बनाते हैं, राइट तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर काम पे आएंगे, अपने उद्योगपतियों को अलाइन करेंगे, कुछ लोगों को नेम एंड शेम भी करेंगे और ड्राइव करेंगे टू अ पॉइंट वेयर वी हैव दीज आंसर्स, यार ये देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, यहाँ ये बनता है, यहाँ ये बनता है, और हम ये बना रहे हैं, ये वह फंडा फला बनता है, ये बना रहा है, और हमारे यहाँ पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नो एक्सक्यूजेज एनी मोर, क्या चाहिए हम करवाते हैं, IIT कानपुर से बात हम करते हैं, IIT कानपुर में लैब खुलवाते हैं, और अगर कहीं पर बॉटलनेक आता है तो उसको एस्केलेट करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया देवांग मेहता का, देवांग मेहता जिन्होंने नैसकॉम, अब कहते फॉर्म तो नहीं करी थी लेकिन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने IT रेवोल्यूशन इंडिया का, IT सर्विसेज रेवोल्यूशन इंडिया का एसेंशियली लीड किया था, नैसकॉम के प्रेसिडेंट,
हाँ मैंने आपका पोस्ट पढ़ा था, वो गुजराती थे ना, गुजराती जेंटलमैन
ही डाइड अर्ली, इसलिए मुझे कभी कभी डर लगता है उनका एग्जाम्पल लेने से, 41 पे ही मरे थे वो, मतलब हमारी
भाई मेरे मन में इतने सारे, नहीं नहीं भाई आप 42 की नहीं अभी,
ये बात भी सही है,
हो गए ना 42 के,
हो जाएंगे यार,
लेट्स गो ब्रो, क्योंकि मेरे को याद है मैं जब जतिन भाई से बात कर रहा था तो कह रहे थे आप 41-42 के ही हो,
तो अगेन ये चीजें जो हैं ये कॉन्वर्सेशन करना तुम जब कर रहे हो ना ये, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ से हो गया स्टार्ट, अगर कल हिस्ट्री में कुछ चेंज होता है तो लोग कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि चलो हमने सबसे पहले बात करी थी, इसीलिए मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, देखो
हाँ.
विनिंग टीम को सपोर्ट करना कोई फायदा ही नहीं है,
हाँ।
है ना, कौन जीता आईपीअल में
पता नहीं भाई, मैं तो ध्यान
फॉलो नहीं देता। अरे अपनी आईपीएल वाली फॉलोइंग है, बड़े कसके पोस्ट करते हैं, गुस्सा जाते हैं, आईपीएल होता है। बहरहाल जो विनिंग क्लब है उसको सपोर्ट किया तो क्या किया, वो सपोर्ट करो उस क्लब को जो अप एंड कमिंग हो, फिर जब वो विन करता है तब तुमको
क्या फीलिंग है, वो क्या फीलिंग है,
वो बोलते नहीं हम लोग, हम तो उस टाइम से टोटनहैम को सपोर्ट करते थे या
लिवरपूल को रहा है भाई, जब तक मैंने सपोर्ट करना छोड़ा वो जीत गए यार, 10 साल की लॉयल्टी। बट भाई मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छे समझ में आया, आई थिंक जितने लोग ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे उनके दिमाग में बत्ती तो ऑन होगी। मैं चाहता हूँ ये कॉन्वर्सेशन जो हमारी अप एंड कमिंग टेक क्लास है, जो आज की डेट में इंजीनियर बैठे हैं अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग जॉब्स में, वो ये सुने और उससे शायद जो लीडरशिप इनमें से निकल के आएगी आज से 10 साल में, 20 साल में, जब ये 20 साल का बच्चा 40 का होगा, आपकी उम्र का होगा और कुछ कर रहा होगा, आई होप दिस इज द सीड दैट इंस्पायर्स।
तुम बाबा उम्र पे का आ रहे हो यार, हम तो यंग लोग हैं।
सॉरी सॉरी सॉरी, बट थैंक यू सो मच, मजा आ गया भाई।